Don't give a batasa to them. Batasa means sweet. In Braja it is niyam or everywhere. Then when the marriage has been pakka, then some sweet has given to all. And they know, by this they know that marriage is going to be held. So don't tell, then they should not smell that my marriage is going. In the night we will go there, and only I will have my father Nanda Baba.
Balaram Sanna.
Not Balaram. Balaram is in their party. He wants that my marriage should be done, not of Krishna. So he is opposite to me. And when I will return with my bride, very beautiful bride, then you can tell, you can
invite
anybody. Before that you should not do.
अरे कौन गाम ते भई एस गैया, कौन
गाम ते भई एस गैया,
अरे कौन गाम ते भई एस गैया, तू चुप कान में कह दे मैया, अरे चुप कान में कह दे मैया, सुन ना ले बल दाऊ भैया, सुन ना
ले बल दाऊ भैया,
अरे सुन ना ले बल दाऊ भैया, अरे लगे रहे सब ताक में ये सवाले तो श्री दाम, ये सब पक्के मुड़ चढ़े तेरा भोरा है लाला श्याम, मंगाए दे बहु छोटी से मैया में तेरे पाम, मंगाए दे बहु छो.
Don't tell Baldev. He will tell everywhere. And you don't see, that Subal, Siddham, Madhumangal are very simple. They are so crooked. They can go to the father of that girl and they will tell that, no, Krishna is not good. He is so bad, he is so thief and all. Don't tell them. But mother, don't delay. At once, do you know where my marriage has been settled? If you don't want to declare it, tell in my ear, so that Baldev will also not know. And then alone or with Nanda Baba, I will go there and marriage, and then that bride should come to me.
गुपचुप को ब्याह रचाऊं, गुपचुप को, अरे बाबा ले बरात संग जाऊं, इन पे नए गीत गवाऊं, गोपिन पे नए गीत, रात में ब्याह के मैं आऊंगा घर माही, बिन हरदी रंग चोखो चढ़े मैया लगे ना एक सदाम, मंगाए.
The Sadama began to laugh and she joked with his son, beloved son, I have no money to marry you. How can I marry? Krishna told, that no expense at all. I will go on foot, not on ghori, on horse, no ornament at all, nothing, no drum, no, all these persons will go alone, or with Baba I will go alone, and married without any pais, any without dakshina, nothing, no new clothes and that things are without pais, हल्दी भी नहीं
है.
नो
टैमरिन,
नथिंग विदाउट स्पाइस माय मैरिज विल बी डन.
गोपियों को गीत ना गावाऊं
एंड आई विल नॉट टेल एनी गोपी टू सिंग मैरिज सॉन्ग्स एंड सो आई विल कम विथ माय न्यू ब्राइड हियर विद यू. बस
हरे कृष्णा.
महादेव जी हैं, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है. मोर कोयल पपी है सूख सारी देखे इसमें रहते हैं. इसमें तरह तरह के फूल पौधे विशेष करके तमाल फूल और ये कदम्ब और ये सब पेड़ सुंदर सुंदर लगे हुए हैं. उस समय इसकी क्या अवस्था होगी. शंकर जी का यहाँ पर एक मूर्ति है महादेव जी की, इनका नाम है आशीषेश्वर महादेव. परजन्य जी नंद बाबा के पिताजी को पुत्र नहीं था, तब उन्होंने इनकी आराधना की. इन्होंने वरदान के रूप में उनको कहा, आकाशवाणी हुई कि आपको 5 पुत्र हो गए, बड़े गुणी और बड़े सुंदर, और बीच वाला जो होगा उसका नाम होगा आनंद, वो भूमंडल का अधिपति होगा और उसको सर्वगुण संपन्न महाशक्तिशाली महासौभाग्यवान एक पुत्र होगा जिसका नाम होगा कृष्णा. वो तुम्हारे वंश की प्रतिष्ठा समस्त विश्व में फैलाएगा. सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ से तब चले गए गोकुल में. 5 पुत्र उनके हुए, नंद बाबा का पुत्र गोकुल में हुआ. अभी तक उनका यहाँ पर शिव विग्रह यह है आशीषेश्वर. चलिए हम लोग उनको प्रणाम करके और फिर हम अपने डेरा में लौट जाएंगे.
कलेवा होगा इधर ही,
वहीं पर कलेवा हो. कहाँ?
यहीं पर होगा.
कलेवा ले आया है?
हाँ.
तो तब देरी कहीं यहीं पर कर लो, ले आओ. वो मोती कुंड कहलाता है या मुक्ता कुंड. हम लोग गए थे आशीषेश्वर कुंड में, तो कृष्ण ने अपनी मैया से मैया के चरण छू रहे हैं. हम मैया को मना रहे, जो मैया और मैं बच्चा नहीं रह गया, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मोटा उटा हो गया हूँ, मेरी शादी कर दे. तो सगाई बरसाने से सचमुच में आ गई. तो बरसाने से सगाई आई, तो सगाई में लड़के के लिए कपड़ा लत्ता और अंगूठी सोने का हार और सब चीजें आती हैं, आभूषण आता है. तो वृषभानु महाराज जी की 11 लाख गायें थी, तो उन्होंने मुक्का मणियों की माला कृष्ण के लिए अपने भावी जमाई के लिए बात पक्की के लिए दिया, कपड़े लगते दिए, किंतु स्पेशल रूप में मणियों की मुक्ता दी माला. जब यहाँ आया नंदगांव में, तो जितने वहाँ के पूर्वासी थे, बूढ़ी बूढ़ियाँ और बड़े बड़े लोग थे, देखने के लिए उत्कंठित थे कि साली से सगाई पक्की करने के लिए कौन कौन सी चीज आई है. बक्से में भरा देखा, सुंदर सुंदर मोतियों की माला, कपड़े लत्ते अच्छे अच्छे देख करके नंद बाबा के और यशोदा जी के होश उड़ गए. किस लिए होश उड़ गए? देख करके उनको आनंद होना चाहिए. अजय इसके बदले में ऐसे ही कोई चीज हमको लड़की के लिए भी तो भेजना पड़ेगा,
अधिक देना पड़ेगा.
इसलिए हमारे पास और यदि इसको लौटा देते हैं तो कहेंगे एक गरीब आदमी है, ये हमारी दी हुई चीज को लौटाया. इसलिए अब क्या किया जाए. अब दूसरे तीसरे दिन में सगाई जाने वाली है उल्टी लड़की के पास में. नंद बाबा बड़े चिंतित हो गए. यशोदा माँ जी से बातचीत करके ये ठीक कर रहे हैं, जैसे ये तो मणियों की जो माला आई है मुक्ता की, हम लोगों के पास में तो ऐसा नहीं है, अब क्या किया जाए. जब उनको इस प्रकार से कृष्ण ने चिंतित देखा, तो कृष्ण झट मैया के पास में, मैया वहाँ से सगाई में क्या चीज आई है? कुछ नहीं आई है. आई क्या है? तो उन्होंने बहुत जिद किया, तो उन्होंने वो सब चीजें दिखलाई, तो उनको देख करके उनको बड़ी पसंद आ गई वो चीज। माँ मैया ये हमको दे दे अभी,
पहना
वो पहना दे अभी। मैया ने बहुत समझाया, वो मान नहीं रहे। मैया किसी काम के लिए इधर उधर गई, किंतु उन्होंने दिया नहीं। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भी नहीं दिया। इतनी बेशकीमती मणियां, ये बहुत दुर्लभ है संसार में, तो ये कैसे दी जाए? ये खेलेगा, ये इसका मूल्य नहीं समझेगा, इसलिए उनको नहीं दिया। बार बार जाने पर उनको डांट डपट करके समझा बुझा करके लौटा देते थे, किंतु उनको तो ऐसी लत है, अभ्यास है, जो जिस चीज को देखेंगे और इच्छा हुई जरूर लेंगे। अब इसके बाद में वो जब इधर उधर चली गई और नंद बाबा से परामर्श करने लगी, कैसे इसको क्या इसके बदले में सगाई के लिए भेजी जाए, इतने में कृष्ण वहां आए और किसी प्रकार से चोरी करके एक मणि की माला उसमें से चुरा ली, और चुरा करके
आदत तो था ही,
यहाँ चले आए। पंडा जी कह रहे हैं कि दाऊ भैया भी था, दाऊ भैया को ले लिया। दाऊ भैया को किस लिए लिया? हल चलाने में बहुत तेज है, उसके पास में हल है, इसलिए हल से चलाया, यहाँ कर्षण किया,
जोत दिया,
बलदेव प्रभु से जोतवा लिया और लेकर के वो जो मणि थी उसमें दे दिए। और इस कुंड को खोदा उसको पानी सिंचन करने के लिए, इस कुंड से पानी को वो अपने हाथों से सींचते, और दो एक दिन में ही उसमें से अंकुर निकले। धीरे धीरे वो लता बढ़ गई, सुंदर सुंदर उसमें फूल आए, फूल से फल की कुढ़ियां निकली, और कुढ़ियों में वो मोती धीरे धीरे पुष्ट हो गया। पुष्ट होने के बाद में जब एकदम सूख गया, तो उसमें से उसको निकाल करके मुक्ता को उसमें से बाहर कर लिया। बाहर कर लिया, पिताजी और मैया को दे दिया, ये तुम लोग इसके लिए चिंतित हो तो यही सी को भेज दो। बड़े नंद बाबा प्रसन्न हुए, उन्होंने दो एक माला भेजी, तीनों एक गाड़ी छकड़े पर
गुरु के सिंह में बांध दिया, खुरों में बांध दिया
और वहां पर भेजा। अब वहां पर ललिता इत्यादि सखियों को, श्रीमती जी को ये पता चला, जैसे हमारे पिताजी ने तो थोड़ा सा ही भेजा था और ये गाड़ी में भरकर छकड़े में भर करके भेज रहा है। तो वो यहाँ पर वो उसकी रखवाली बाकायदा करते थे, तो यहाँ पर वो सब सखियाँ आईं, ललिता विशाखा इत्यादि आईं और कृष्ण से मांगने लगी जो हमें इसमें से थोड़ी सी मुक्ताएं हमको दो। कृष्ण, मैं नहीं देता, तुम लोग क्या करेगी? तो हम अपनी सखी को सजाएंगी। आ तो तुम्हें याद नहीं है, ये तुम्हारे पास में कुछ मड़ियां थीं, मैं मांगने गया तो तुमने पूछा कि किस लिए, तो हमने कहा कि अपने बैल को और गाय को और बछड़े के खूर में बांधना है, और तुम लोग दिया नहीं सिंह में, हम तुम्हें नहीं दे सकते। अंत में बहुत निहोरा करने लगे, जब नहीं दिया तो वो सब सखियां बोले, तब क्या हम लोग मोती की खेती नहीं कर सकती? उन्होंने अपने आप उस खेत को एक पास में वो वहां पर बरसाने में एक मुक्ता कुंड है, वहां पर खेत को जोता, और खेत को जोतने के बाद में उन मणियों को बीज के रूप में दिया, और अपने अपने घरों से घड़ों घड़ों दूध लेकर के उसको सींचने लगी। कुछ दूर में उसमें अंकुर क्या निकलेगा, उसमें अंकुर माने वहां पर जंगली जो घास होती है कांटे वाली, कांटेदार उसमें से निकली। तो पहले उनको देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, जाओ मुक्ता निकल रही है मुक्ता की, किन्तु थोड़े देर के बाद में निकलने के बाद में कांटे और उसमें ये सब निकलने, तो बड़ी उदास हो गई। फिर कृष्ण के पास में आई, कृष्ण से बहुत निहोरा किया, तब क्या हुआ?
कृष्ण ने मधुमंगल को लगाया, नहीं सुबल को, बोले कि अच्छा ये हमारा ये मुनि होगा और यही हिसाब किताब करेगा। कि जितना मुक्ता के बदले
बदल में
देना। हाँ, तो उन्होंने कहा जैसे अच्छा अच्छा मुक्ता हमारी नेपाली तो कुछ मुक्ता हमको दो। कहा जैसे ये लेन देन का व्यापार मैं नहीं करता, ये मधुमंगल मुनि इसका लोका जोखा और ये सब करेगा, जितना मुक्ता देगा उसका डेढ़ा लेगा। इस प्रकार से यही सब क्रीड़ाएं बचपन की क्रीड़ाएं हैं। कृष्ण ऐसे अद्भुत अद्भुत करते थे, राधा जी और भी अद्भुत अद्भुत कार्य करते थे।
कृष्ण से कहा अरे धूर्तराज शिरोमणि
रत्न सरोवर वहाँ बरसाने में और उसे एकदम डुबकी लगाओ और उसमें से रत्न निकल जाए। बहुत थे
राजा ने हाँ से हार भेजा है सगाई के लिए।
हाँ,
तो यशोदा मैया और कृष्ण जी ये नंद बाबा
हाँ
परामर्श किया है।
हाँ,
ये दियाओ तो किए हो बना, क्यों वो राजा है और हम जमींदार हैं, गोपन के राजा हैं।
ठीक है,
9 लाख गाय है हमारी, गाय और घर द्वार सभी दिख जाएंगे, लेकिन हार की पूर्ति न कर पाएंगे।
हाँ, देखो फिर
उन्होंने कहा कि अभी नाहुल पंडित को आज भ्रमण कर ले, कल ये चला जाए भेज दे। तो कन्हैया ये बात को जान गए, वो चरा रहे थे गाये गए, तो उन्होंने जो है आ करके चुपके से यहाँ से वो हाथ चुरा लाए और ला करके यहाँ से 5 रोज में फूल लगने लगा। छठे रोज जो है फल लग गया। छठे रोज बोले कहने चल भैया जितने लेना उतना ले, यहाँ आ गए तो बाद में का मोटी मोटी फैल गए। अब जीने मान के ना तो झाड़ झाड़ करके जुआर करके भर करके नाव की पंडे सभी देखने आए हैं। बाहर फूल लेके गाड़ी और छकड़न में इंजन में लाद के चांद का किनारे ले लिए नाव पर।
ये
यहाँ से लेकर के जब ये चले भगवान राजा उधर बाहर देख रहे कि 7 दिन हो गए और नाहुल पंडित अभी सगाई करके ना आए। ये हम देख रहे हैं कि हमने एक हार भेजा है, ये जो है गाड़ी में और चकड़ा में उतर रहे मोती लाने चले जा रहे हैं। हम वो उदास होकर के बैठ रहे हैं। नाहुल पंडित जब पहुंचे तो उनसे हार टूट जाती, आज के ताजे हैं उनके मोदी है। जब इनके उनके मोदी इतने रोज मिल रहे हैं, हमारा राज इतना बड़ा होते हुए तब एक हार मैंने जीवन भर में बना पाए तो हम उनसे विवाह कैसे करेंगे। राधा उधर से आ गई, मोनिक बाबा उधार कैसे बैठे। तो उन्होंने बताया कि जीवन में भी एक हर महीने कमाया, तुम्हारी सगाई में भेजा बरसाने और वहाँ पर उनके बाग हैं में और गाड़ी में चकलन की तारीख आज के हमारे ये भी आप कैसे करे हो। उन्होंने कहा बड़ा चिंता क्यों करते, रतन सरोवर में चले जाओ जितना चाहो उतना रतन निकाल ले। उन्होंने वहाँ रतन सरोवर बनाया।
बोलो मुक्ता कुंड
जय
जय जय जय जय श्री
राधे।
जहाँ जाओ ब्रजवासियों से और उसके स्थान के जो रहने वाले महात्मा उनसे पूछो ये यहाँ पर कौन सी लीला हुई। वो
मधाई व जन जनी ब्रजवासी निवेदी व चरण धरिया।
रसिक वैष्णव के साथ में जाओ जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई हैं और वहाँ के स्थान के रहने वाले लोग महात्मा जानते हैं उससे पूछो, देखो कितना आनंद है। यही तो ब्रज में भ्रमण करने का ये तरीका है और यही फल है। जय जय श्री
राम।
आप लोगों ने सब प्रणामी दिया होगा। नहीं, मुक्ताचरित तो उसमें हिसाब किताब मधुमंगल करेगा। किस चीज का लेन देन का, हम मुक्ता देंगे उसके बदले में कुछ लेंगे, तो इसमें बहुत कुछ रहस्य छिपे हैं। और यदि वो कुंड में यदि मोती मिल गया है ना, मोती मिल गया उसमें कोई बात भी बात की बात नहीं रह गई नहीं? इसमें वो भी ठीक है और हम लोगों का दान के लिए मुक्ता चरित्र की, किंतु इसमें रस भरा पड़ा है क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा समाधि में ये देखा हुआ चीज है। दोनों का सामंजस्य इसको कर लेना पड़ेगा।
गौ प्रमानंद हम सरो में सनातन गोस्वामी की भजन कुटी और दान बिहारी का दर्शन करके आश्रम में जाएं।
पहले ये रास्ता घाट कुछ था, ये सब ताम सोर के पास के रहने वाले, ये सब उपवन था। कृष्ण के लीला के समय में तो और सुंदर उपवन था। कृष्ण यहाँ पर गोचारण करके पांच सरोवर में बछड़ों को गायों को पानी पिलाते, अपने पानी पीते, अत्यंत सुंदर पवित्र निर्मल मीठा पानी होने के कारण इसका नाम पड़ा पावन सरोवर। कमल के फूल इसमें खिले रहते थे, भौरे उस पर गुंजार करते थे, कोयल कुहू कुहू करती थी चारों तरफ। अभी भी मोर का शब्द अभी यहीं से सुन रहा था, के का मयूर कह रहा के, और मयूरी कह रही है का, के पुल्लिंग का स्त्रीलिंग, मयूरी कह रही है श्रीमती राधिका के लिए का शब्द का प्रयोग। कौन जो कृष्ण रूपी मतवाले रसिक को अपने मान रूपी अंकुश से उसे उठाती बैठाती है, उसको एकदम वशीभूत कर देती है। कौन है ऐसा जगत में? एकमात्र राधिका। मयूर कहता है तुम नहीं जानती कि मैंने कौन? राधिका जी के धैर्य, धर्म, सहिष्णुता, लज्जा, मान इसके पर्वत को भी चूर्ण कर देता है अपने एकमात्र दर्शन की छटा से। वो कौन है? कृष्ण। सुख सारी दंड करते हैं परस्पर। सनातन गोस्वामी में देख करके यही भजन का सर्वोत्तम स्थान समझा। ये पावन सरोवर के किनारे बैठते थे, कृष्ण गोचारण करके अपने गैया बछड़ों को वो रास्ता है उधर से लेकर के आते। गोविंद लीलामृत के अनुसार में या कृष्ण भावनामृत के अनुसार में राधा जी का एक राजभवन पास ही में था। विश्वभानु महाराज ने बगीची के रूप में जावट का यहाँ की जमींदारी उन्होंने कुछ ले ली और जो और श्रीमती राधिका जी के लिए अपनी लाडली बेटी के लिए वहाँ पर एक राजभवन बना दिया था। उस राजभवन से ही वो देखती थी कृष्ण गायों को चरा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बंसी वादन कर रहे हैं। जब यहाँ से स्नान करते तो उधर से वो भी स्नान करने के लिए अपने सखियों के सहित में आ जाती। गोचारण करते जबकि लौटते, यदि उनको मान लिया जाए वहाँ जावट में, तो गोचारण करके यहाँ पर जबकि नंद ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ से कैसे देखेंगे? किंतु यहाँ पर देखना संभव है इस लीला के कथा के अनुसार में। कृष्ण गोचारण करके आ रहे हैं, गायों के तरफ में ख्याल नहीं है, ख्याल उनका किधर है? इधर उधर झांक रहे हैं, कुंजों में, उसके अटारियों में, खिड़कियों में झांक रहे हैं, आंखें खोज रही हैं। और यही से गोपियां नैनो प्लाच तनुम गो गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवीवादन परम दिव्यांगीवर कंति बिंदु बदनम बरहावतम संप्रियम श्री बत्सांग उदार कौस्तुभधरम पीताम्बरम सुंदर। गोपी न गोपिया ऐसे नैन से उनकी आरती उतारती और कृष्ण उनकी आरती को उन आंखों से ही ग्रहण करते थे। वो स्थान है पावन सरोवर। कभी कभी नंद जसोदा भी यहाँ पर आते थे स्नान करने के लिए, किंतु जसोदा जी जाती थी प्रतिदिन
जसोदा कुंड
में और अपने दोनों बच्चों का और हजारों बच्चों का वहाँ पर क्रीड़ाएं का दर्शन करती थी। वहाँ यहाँ पर मैं समझता हूँ लाखों तीर्थ स्थान है, पद पद में यहाँ पर है। दोहनी कुंड होगा, पंडा जी कहाँ है? पंडा जी हमारे नहीं आया। अच्छा दिखलाया छाछ कुंड पास में है,
हम लोग निकल गए थे।
हजारों कुंड यहाँ पर चारों तरफ में है। मनिहारी कुंड है, पानीहारी कुंड जहाँ से कि पानी भर करके लाया जाता था उनको। कितने कुंड हैं और कितने दर्शनीय स्थान है, लीला स्थलियाँ हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक एक रेणु के में ये सब देवता है। कृष्ण की यहाँ पर बहुत दिनों तक लीलाएं हुई। जब गोपियां आई और कृष्ण को यहाँ से अक्रूर ले गई, इसके बाद से गोप गोपी लोग कहीं नहीं गए, यहीं पर रह गए। विप्रलम्ब की लीला वहां पर बतलाया था। ये सब मिलन का स्थान है। यशोदा जी का वात्सल्य स्नेह यहाँ पर अधिक है। यदि कुछ है तो थोड़ा सा उसमें मधुर रस उसमें मिला है, इसलिए राधा कुंड को हमारे गोस्वामियों ने इससे भी अधिक शुद्ध माधुर्य का वहाँ पर स्थान बदला है। इसमें दास भी सम्मिलित है, सख भी सम्मिलित है, वात्सल्य भी सम्मिलित है और इसके बाद में मधुर रस भी है। मधुर रस कुछ कम है, वात्सल्य और सख ही यहाँ पर अधिक है। पौगंड की लीला यहाँ पर हुई है। यशोदा जी ने अपना जितना स्नेह था सब वात्सल्य भाव कृष्ण के ऊपर में उड़ेल दिया था। यहाँ ब्रह्मा जी देख करके विस्मित है। नारद जी एक बार आए, उन्होंने देखा, अरे ये तो वेदों का प्रतिपाद्य विषय पर ब्रह्म नंद बाबा के महल में उनके आंगन में लोटपोट कर रहा है, रो रहा है, मैया गोदी में चढ़ूंगा, दूध पीऊंगा, और वो इस तरह से करते हुए अंगली दिखला रही है। तू चोर हो गया है, ढीच हो गया है, धूर्त हो गया है, अब तुझे मैं गोदी में, अभी तुम्हारा श्रृंगार की अभी लौटने लग गया, अभी दूसरे के घर से मक्खन चोरी करके आने लग गया, मैं नहीं लूंगी। और वो उतने लौट रहे हैं, ये देखो तमाशा, ये पर ब्रह्म यहाँ पर लौट रहे हैं उनकी गोदी में जाने के लिए ललक रहे हैं, और ये यशोदा मैया उनको इस प्रकार से कह रही है, ब्रह्मात्यादि मन के द्वारा भी, तपस्या के द्वारा अत्यंत पवन बना हुआ हृदय में भी उनका ध्यान लीलाओं का नहीं कर पाते, और देखो तो ये गोपी की क्या स्थिति है। इसलिए उन्होंने कहा था, सुपि मपरे सुमितरे भारत मन्ने भजंत भव गीता अमी आनंदम बंदे यस्या लिंदे परम ब्रह्म, जिसके आंगन में ये पर ब्रह्म धूल में लोट पोट रहा है, ऐसे नंद बाबा को के जो भवन है नंद बाबा को मैं प्रणाम करूं। और लोग वेदों का अध्ययन करके निर्विशेष ब्रह्मवादी भी बन सके तो बन जाए, संसार के भय से पीठ हो करके हम ब्रह्मास्मि करते हैं वो करते रहे, महाभारत का भजन करे, अपत माता पिता और ये वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हैं तो करते रहे, भजन तो भाव गीता संसार से पीठ होकर के इन सब का ये शरण ग्रहण करें। वेदों में धर्म और धर्म इत्यादि की बातें की गई है, हमको उससे कोई संबंध नहीं है। मैं तो नंद बाबा के आंगन में जहाँ पर वो पर ब्रह्म लौटता पलौटता है, मैं नंद बाबा की ही वंदना करता हूँ। ऐसे नंद बाबा के या नंद गांव में आप लोग आए हैं, हम लोगों का परम जन्म जन्म कोटि कोटि का ये सौभाग्य समझ लीजिए। आज पाऊं स्वरों में आ रहे हैं, कहाँ मुक्ता कुंड में गए, अभी हम लोग पेर कदम में गए, कहाँ हम लोग गए, उद्धव क्यारी में गए, नंद बैठक में गए, नंद बाग में गए, चरण पहाड़ी अक्रूर का स्थान वहाँ गए, बंदा देवी के स्थान गए, कितना गिनाऊं। अभी वहाँ पर चलेंगे, हम लोगों का पाठ प्रवचन होगा, उसमें संक्षेप में और सबका वर्णन करें। यहाँ पर सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी जी हमारे संप्रदाय की गुरु है। पहले वे स्वरूप दामोदर, इसके बाद में राय रामानंद जी है, इसके बाद में इन्हीं का नाम आता है। रूप गोस्वामी के गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? उन्होंने बृहद भगवतामृत ग्रंथ लिखा, श्रीमद्भागवत दशम स्कंद की टीका
लिखी और वैष्णव प्रसंग की
पहली बार लिखा, जो समस्त वैष्णव समाज समत्कृत हो गया। आज सवेरे उसके लिए कुछ थोड़ा सा मैंने बतलाया था। ऐसी सुंदर सुंदर रश्मि टीकाएं की हैं, जिसको देख करके सिद्धर जी और हनुमत जी, बादशाहन जी और सब लोग समत्कृत हो जाते हैं। अभी भी टीकाओं को देखने से ऐसे मालूम पड़ता है।
ये बृहद भगवतामृत हमारे रूप गोस्वामी के लघु भगवतामृत का ये मूल है। भक्ति गोस्वामी सिंधु उज्ज्वल मणि का भी ये पथ प्रदर्शक है। ऐसे सुंदर खंड से उन्होंने वर्णन किया, हमारे समाज को हमारे संप्रदाय को एकदम बांध दिया चारों तरफ से। हम लोग का विचार क्या है, हम किसका भजन करने जा रहे हैं, भजन की का उपासना मार्ग क्या है, इन्होंने बतलाया। और भी ग्रंथ हमारे समाज को ऊपरी रूप से हरिभक्ति विलास के द्वारा एकदम बांध करके रख दिया कि कैसे मंदिर होना है, कैसे उपासना, कैसे वैदिक भक्ति, ये सब का विषय इन्होंने किया। ये यहीं पर भजन करते थे, उनकी बातें हम दो एक हम आप लोगों को हम लोगों ने सुनाया है, अभी ये बच्चा ने सुनाया है, अभी रात हो जाएगी, बस यही उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि दे करके वहाँ पर थोड़ा सा उसके वर्णन करने की चेष्टा हम लोग करेंगे। आप प्रणाम करके अब सीधे वहाँ पर आ जाइए जहाँ पर हम लोग था। आज हम लोगों की बड़ी भारी एक गलती हो गई, मैं जब भी आता था सब वैष्णवों को यहाँ से बुला करके एक साथ में प्रसाद इत्यादि खाता, आज हमें याद ही नहीं रही, हमारा कपाल फूट गया, हमको याद ही नहीं रही, इसलिए वैष्णवों से हम क्षमा मांगते हैं।
शरीर खराब तो यार,
हमको याद ही नहीं थी। अच्छा जैसा हो, सनातन गोस्वामी पाद की, पावन सरोवर की जय। किसी यहाँ पर एक और चीज भूल गया, ये इस स्थान की स्थापना हमारे पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद की संत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज ने की। प्रभुपाद जी का यह मठ पहले जो था हमारा बंगाल में उस समय में साग की पत्तियां बनती थी, वही ब्रह्मचारी लोग खाते थे, बोरा बिछा करके सोते थे, दिन रात भजन करते थे, रहने के लिए घर नहीं थे, पलंग और चारपाई और ये घड़ी तड़ी ये जो देख रहे हैं ये सब एकदम कुछ नहीं, निष्किंचन रूप में भजन करते थे किसी प्रकार जीवन धारण करके। हम लोगों के गुरु महाराज जी बड़े भारी जमींदार थे, मिली के थे, ये महाराज जी थे वो भी बड़े रेलवे में बहुत बड़े अफसर थे, सब लोग छोड़ करके आए। ये बोले जैसे मैं 5 रुपया दिया करूंगा महीने में, उस समय में आज से करीब 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 70-80 वर्ष पहले, लोग बड़े प्रसन्न हो गए। उस समय में 1 रुपये में 20 किलो चावल आता था, 1 रुपये में तो हमने देखा था कि 1 रुपये में 1 मन गुड़ आता था, 1 रुपये में 8-10 दिन खूब अच्छी तरह से 10-20 आदमी का चल जाता था। उसमें वहाँ पर साग सब्जी किसी प्रकार से मिला करके सब्जी इत्यादि से मठ चलता था। जब ये आए तो ये पैदल ऐसे नहीं चलते थे, कारों में जाते बड़े बड़े सेठों के यहाँ, और ऐसे हरी कथा करते जो 10-10-20-20 हजार रुपया तेल घी गुड़ इत्यादि सब आने लगा, और मठ एकदम चारों तरफ में बनने लगे, मायापुर इत्यादि मठ बन गया और चारों तरफ भारत में प्रचार हुआ। इनकी योग्यता दे करके इनका नाम रखा अपराकृत भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का। सारंग कहते हैं बजाने को, गीत के साथ में सारंग बजता है ना, और सारंग का स्वर इतना के हारमोनियम इत्यादि नहीं, हारमोनियम कोई वाद्य संगीत का कोई ये नहीं, ठीक नहीं है वो, उसमें स्वर ऐसे मूर्छना इत्यादि आरोह अवरोह उसमें नहीं आ सकता है जितना की सारंगी में आता है। इसलिए भक्ति सारंग अटक उस कीर्तन के साथ में ये सारंग बजता है, उसकी सहायता करता है। तो ये प्रभुपाद जी के ये भक्ति रूपी ये सारंग थे, इनको उन्होंने इंग्लैंड में भेजा, पाश्चात्य देशों में भेजा, और वहां पर जाकर के ये बड़े बड़े लोगों से मिले, वहां के राजा से मिले। उस समय में कौन थे, एलिजाबेथ थी या पंचम जॉर्ज इत्यादि युवराज थे, उनसे मिले, वहाँ का जो वायसराय था उससे वो जाकर के मिले, और वहाँ पर उन्होंने पहली बार वन महाराज जी गए थे, वो वहाँ से चले आए थे, इसके बाद में प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा था, वहाँ पर प्रचार किया। भारतवर्ष में बहुत जगह इन्होंने मठ इत्यादि की, हमारे गुरु महाराज के परम बंधु थे, इस प्रकार से उन्होंने ये स्थान को दे करके इस स्थान को उन्होंने लिया था, और दो एक कोठरी बना करके भजन करने के लिए रखा था। पीछे से
हमारे ये महाराज जी भक्ति क्या अकिंचन महाराज जी हैं, उन लोगों के अनुगत्य में बहुत सुंदर सुरम्य छोटा सा मंदिर कितना सुंदर बनाया और भजन करने के लिए ये कोठरियां बनाई। मैंने भी यही सोचा था कि मैं अंत में यहीं पर आऊंगा, इन लोगों के आश्रय में इसी पीलू के वृक्ष के नीचे अकिंचन रूप में कुछ दिन भजन करूंगा। ये लोग परम सौभाग्यवान है जो निरपेक्ष होकर के ये भजन करते हैं। विशेष करके हमारे ये भक्ति श्रोती महाराज, ये सब लोग भजन करते हैं, हमको भी देख करके इच्छा होती है, किंतु अब सामर्थ्य वैसे भजन करने की नहीं है, माधुकरी भी नहीं लेकर के जीवन निर्वाह कर सकता। हम इस स्थान को और महाराज जी को भी प्रणाम करके और हम लोग अब चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी। गौ प्रमाणे
ये कोकिला वन है, यहाँ पर बहुत ही गंभीर वन था, अभी ब्रज में समस्त वन कट गए हैं, तभी ये गोकिला अभी कोकिला वन अभी तक अभी विद्यमान है। इसमें सुंदर सुंदर पक्षी विशेष करके कोयल इसमें रहती थी, अभी भी हैं, इसलिए इसका नाम कोकिल है, कोकिल वन। विशेषता कृष्ण यहीं से बेर के पेड़ पर बैठ करके छिप कर कोयल जैसा ठीक ऐसा ही अनुकरण कर कुहू कुहू करते थे। पास ही में यहाँ पर जावट है, इसलिए उनको बुलाने के लिए ये कोकिल जैसा शब्द करते थे, इसलिए इस वन का नाम कोकिल वन। 50-60 वर्ष पहले इस वन की और भी रौनक थी, इसमें हिरण इत्यादि रहते थे, खरगोश हिरण मयूर, मयूर अभी भी हैं, कोकिल भी हैं। 5-7 मील का ये परिक्रमा इसकी होती है,
पंचकोशी
परिक्रमा होती है, बहुत से दूर दूर देश के लोग आते हैं और इसकी परिक्रमा करते हैं। आज हम लोगों का अधिक विलम्ब हो गया, इसलिए जल्दी अधिक हम जहाँ पर ठहरेंगे वहाँ पर बतलाएंगे। अब यही समझिए कि ये कोकिल वन है, यहाँ पर कृष्ण कोकिल का अनुकरण करके और सब सखियों को यहाँ पर बुलाते हैं। यहाँ पर रास स्थली भी है, यहाँ पर सुंदर सरोवर है, ये सरोवर का अब उद्धार भी अभी यहाँ के महात्मा जी कर रहे हैं, बड़े परिश्रम से इसको ये फिर से नया इसको रूप दे रहे हैं। वी हैव कम टू कोकिल बन, दिस इज कोकिल बन, वी आर नियरर टू जावत एंड अंडरग्राम। दिस बन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बन एमोंग 12 बन, मधुबन तालबन कुमुद बन बेहुला बन महावन काम्य बन खदीर बन कोकिल बन भद्र बन भंडीर बन माठ बन
महाबन
महाबन बेल बन वृंदावन महाबन
लौहवन
लौहवन। दीज आर द मेन बन, देर आर सम उपशाखा बन 12 एंड 12 उपबन, देर आर 36 बंस हियर इन वृंदावन एंड अमोंग वन बन देर आर हंड्रेड्स ऑफ बन अगेन लाइक वृंदावन। इन वृंदावन यू सी
अटला वन किशोर
अटला वन
किशोर वन
सेवा कुंज वन निधि वन चोर वन चोर वन इज ऑल्सो देयर सो मेनी वन। हियर कृष्ण यूज टू सेट ऑन ए बदरी
पाम ट्री
पाम नॉट
दुर्वन स्पेलिंग है
क्या क्या होगा भाई बताइए, बदरी का बदरी जानते हैं, बेर
बेर आई डोंट नो इंग्लिश महाराज,
बेर यू नो
नॉट बेर
बेर
बट यू नो कृष्ण लाइक बेर बिकॉज when it is
about to ripen, its
color
becomes golden. There are two kinds of bear.
Red.
One little reddish, very sour, very sour. But this is very sweet.
Gold color. It,
and gold color like Srimati Radhika, coming very, abha asti hai isme.
Glow.
Like pearl.
It glows like pearl.
The Krishna used to sit on that Badri tree, and he calls Radhika in the same swar,
same voice,
same sound
voice
as Kukku sings. Kuhu, kuhu, kuhu. And in kuhu, Srimati Radhika name. So they used to know that Krishna is calling us. And they used to come here and meet Krishna and to dance and to make ras and so many kinds of Bihar and Bilas used to study. It is a very good one. So many kakus, so many peacocks, so many deer still will be seen here. Very good big pond here. Let us see, and the story of this place I will tell another place.
Go Pramanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
We are seeing this pilu pear. Pilu? It is of 5,000 years before. He has seen the Krishna pastime, and here there was a bear pear that I told, and Krishna used to sat on that bench and he used to do like kakku, kuhu, kuhu. These all trees have seen Krishna pastimes and doing viras here. So we are praying to them in the lotus foot that you should be merciful to us to have keep your mercy that we can realize all Krishna lila. By eyes we cannot see, but if they will do mercy to us, we will be able to see and realize all these things. Don't disbelieve. Don't have any
doubt
in it. They are so much powerful that they can give anything to us. They are not ordinary trees and all these. So we pray this kunda and all these trees and the holy land and Krishna as a kokil that you should be merciful to us. To reflect your mercy in our heart.
Ni kokila kunda. Anudar bata surya kunda, udar kunda bata re surya kunda.
Let us see. Aapke liye hum log
saapon ka koi auchitya nahi tha maharaj.
Hain?
Sarp itne sare hain, iska kya auchitya? Iska matlab isme nahate nhote.
Are kitne bhi to sarp hai na.
Kyun baba?
দেখিতে ভুলিব ভাগবে রাধে জয় জয় মাধব দয়িতে